सात। भवन से बाहर जाते जाते वह चौक में ऊँघते हुए राजहंस की दृष्टि डालना नहीं भूला। उसकी इच्छा हुई कि मशालों के धूमिल प्रकाश में उस सरोवर में पड़े हुए उस गर्वीले राजपक्ष के लंबे प्रतिबिंब को पानी में हलचल उत्पन्न करके नष्ट कर दे। झट से हाथ से पुष्क राजमणि धारण करने वाली काली अंगूठी निकालकर उसने सरोवर में फेंक दी। बिंब थरथराए, परछाइयां हिल उठी। ऊँघते हुए वे पक्षी दूसरे ही क्षण घबरा कर जग गए, इधर उधर पैरों की बल्ली मारने लगे, सरोवर में लहरें उत्पन्न करने लगे। उनकी दौड़ धूप की ओर देखता हुआ वह मन ही मन हंस पड़ा। जल्दी जल्दी पैर बढ़ाता हुआ वह शिविर की ओर जाने के लिए कुरुओं के उस भव्य राजप्रसाद की प्राचीर के प्राचीन महाद्वार को पार करने लगा। महाद्वार में क्षण भर ठहर कर उसने वृशाली के भवन पर दृष्टि डाली। एक गवाक्ष में उसके सबसे छोटे पुत्र विषकेतु को लिए वृशाली खड़ी थी। वही अकेला कर्णपुत्र युद्ध के वडवानल से दूर हस्तिनापुर में था। अपना हाथ उठाने के लिए उसने क्षण भर हलचल की और निरंतर सटी ऊपर चढ़ती गई सीढ़ियों पर एक बार दृष्टि स्थिर कर उसने हाथ न उठाते हुए ही महाद्वार पार किया, निग्रह से तथा अबोध निश्चय से। सरोवर से बाहर निकलने वाली हाथी की तरह वह राजप्रसाद से बाहर आया, मन में निग्रह बांधकर, देहरी पर सारे नाते छोड़कर। अर्धरात्रि के बीच जाने पर वह अपना रथ लेकर अपने शिविर के सामने कुरुक्षेत्र में आया। उसके शिविर के द्वार में उत्सुकता से राह देखता हुआ दुर्योधन खड़ा था। आगामी कल का अपना सेनापति कहीं चंपानगरी तो नहीं चला गया, इस संदेह से दुर्योधन त्रस्त हो गया था। परंतु कर्ण को सामने देखते ही उसका मुख पुनः उज्ज्वल हो गया। शिविर के द्वार से बाण की तरह आगे बढ़ते हुए उसने स्वयं ही कर्ण के रथ के घोड़ों को रोकने के लिए वायुजित की पीठ पर के पर्याण के बंधन को अपने दृढ़ मुट्ठी में पकड़ लिया। दौड़ते हुए घोड़े रुक गए, फेन झरने लगा, उष्ण निश्वास विलीन होने लगे। कर्ण को रथ से नीचे उतरने का भी अवसर देते हुए दुर्योधन ने आगे बढ़कर उससे पूछा, अंगराज, तुम्हारा सत्यसेन धराशायी हो गया, कल तुम्हारे रथ के सारथ्य का क्या होगा? दुर्योधन की तीक्ष्ण नासिका मशाल के धूमे प्रकाश में भी स्पष्टतः फूली हुई दिखाई दे रही थी। राजन, मुझे एक कुशल प्रामाणिक सारथी दो, फिर तुम देखोगे कि कल मेरा रथ पवन को विलज्जित करने वाली गति से सम्रांगण में निर्बाध दौड़ेगा। कुशल सारथी, प्रामाणिक सारथी? अपने संकुचित उभरे हुए कपाल पर सिकुड़नों की अल्पना चित्रित करता हुआ बाई मांसल हथेली पर दाएं हाथ की तीर्ण बंद मुट्ठी को दो तीन बार धड़ाधड़ मारता हुआ दुर्योधन विचारमग्न हो गया। उसके सिकुड़नों के मोटे पनारे में स्वेद का प्रवाह संचित हो गया था। वक्र और मोटी भौहें और अधिक वक्र हो गई थी। मशालों के लाल पीले प्रकाश में उसका रक्तवर्णी मुख और अधिक उग्र दिखाई दे रहा था, विभत्स दिखाई दे रहा था। बड़ी बड़ी कंजी आंखें भविष्य का भेद लेने के लिए संकुचित होकर मस्तिष्क के कोने कोने को ढूंढ रही थी। उसकी निग्रही मुख मुद्रा पर ही भी सूक्ष्मता से निरीक्षण करने वालों को चिंता की काली घटा स्पष्ट प्रतीत हो सकती थी। कर्ण के रथ का सारथ्य किस समर्थ योद्धा के हाथ में दिया जाए, इसी एक विचार में वह एक असंख्य मूड लेकर आते हुए अपनी जीवन नौका को भी एकदम भूल गया था। उसके पुष्ट भुजा पर से सदैव सरकता रहने वाला महीन बुना हुआ बहुमूल्य राजवस्त्र, कुरुओं का मूल्यवान उत्तरीय सरक कर कब नीचे गिर चुका था, सदैव की भांति जोरदार झटका देकर उसको संभालने का भान भी उसे नहीं रहा था। वे दोनों ही क्षण भर एकदम शांत खड़े रहे कुरुओं के राजभवन की पाषाण प्रतिमाओं की तरफ। अंगराज, यदि बुरा न मानो तो ऐसा एक ही योद्धा है जिसे मैं सुझाना चाहता हूँ, तुम्हारे रथ का सारथ्य करने के लिए सब प्रकार से आज वही योग्य है, दुर्योधन की पाषाण मूर्ति ने कहा। कौन? कर्ण ने सिर पर रखा हुआ मुकुट और भारी लौहत्राण उतार कर थाल में रख दिए। उसके घुंघराले घने के शरद के पक्षियों की भांति विमुक्त होकर बिखर गए। सुपुष्ट ग्रीवा में लौहत्राण रखते समय वही मोहक बल पड़ गया। मद्रराज शल्य, दुर्योधन ने अपना सशक्त दाया हाथ उसके विशाल कंधे पर रखा। शल्य, राजन तो भूल रहे हो कि शल्य पांडवों का मामा है, राजमाता माद्री देवी का सगा भाई। यह युद्ध भले ही द्युत से उत्पन्न हुआ हो, किंतु इस कठिन अवसर पर तो तुम द्युत का युद्ध अब फिर मत खेलो, उसने कानों की ओर संकुचित होते गए अपने नीले नेत्रों को ताना। स्वर्णिम कपाल पर संकुचनों की रज्जुएं खिंच गई। कर्ण, इस युद्ध से पहले ही मैंने शल्य के साथ सभी राजाओं से भिन्न सम्मानपूर्ण व्यवहार किया है। वह मद्रदेश से कुरुदेश क्षेत्र की ओर चला था, तो वास्तव में पांडवों से मिलने के लिए ही, किंतु उसके मार्ग में स्थान स्थान पर स्वागतदार बनवाकर राजदूत नियुक्त कर उसे बहुमूल्य भेंटें अर्पित कर मैंने उसे अपने पक्ष में कर लिया है। युद्ध में कुरुओं के प्रति वह निष्ठा से प्राणपण से हमारे लिए लड़ेगा। बार बार भीम के सम्मुख जाकर उसने अनेक को अपना समर्थ संरक्षण दिया है। विश्वास रखो, शल्य अब कभी पीछे पैर नहीं रखेगा। क्षत्रिय पश्चाताप नहीं किया करते हैं, पीछे नहीं फिरा करते, अवसर आने पर पावन होने के लिए मृत्यु का भी आलिंगन करते हैं। तुम जानते ही हो, नाते साधारण जनों के लिए होते हैं, राजाओं के लिए नाते भिन्न होते हैं। वे होते हैं वचन, एक निष्ठा, रणांगण। उसने कर्ण के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही जोर से ताली बजाई। दूसरे ही क्षण प्रभंजन शिविर में प्रविष्ट हुआ। प्रभंजन, जा मद्रराज महाराज शल्य को सादर लिवाला। उसने शल्य के शिविर की ओर उंगली से संकेत किया। जल्द ही शल्य उन दोनों के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी अपेक्षा थी कि एकाकी दुर्योधन ही शिविर में होगा, अधिक से अधिक अश्वत्थामा होगा, शकुनी होगा, परंतु सामने कर्ण को देखते ही उसके भार पर सिकुड़ने पड़ गई। उसको इस बात का कुछ भी पता नहीं था कि कर्ण वास्तव में उसका कौन था। इसके अतिरिक्त दिग्विजय के दौरान कर्ण ने उसका जो प्राणलेवा अपमान किया था, उसे भी वह भूला नहीं था। उपहास से उसकी ओर देखकर शल्य ने अपने उत्तरी के छोर को यूं ही झटका दिया। उस सूर्यपुत्र को शल्य के उस दाम्भिक क्षत्रित्व का क्रोध नहीं आया, उससे घृणा नहीं हुई, खिन्नता नहीं हुई, वह अचल था, स्तब्ध था। मद्रराज, एक महत्वपूर्ण निर्णय के लिए मैंने आपको इस समय कष्ट दिया है। दुर्योधन ने घोर निरवता भंग की। कैसा निर्णय कौरवराज? शल्य ने कर्ण की ओर पीठ करते हुए अपनी आंखें दुर्योधन पर केंद्रित कर दी। कल का संपूर्ण यश अब केवल आपके हाथ में है। कंजी आंखों से दुर्योधन ने शल्य को घूरा। मेरे हाथ में? वह कैसे? शल्य ने वार्तालाप का रुख समझने में आने के कारण बाहर की सिकुड़ने बढ़ाते हुए पूछा। मद्रराज, कल कुरुओं के सेनापति के महाराज महारथ का सारथ्य केवल आप ही कर सकते हैं। दुर्योधन ने अपना सशक्त हाथ शल्य के कंधों पर रख दिया और उसके मन की थाह लेने के लिए आंखें उस पर स्थिर कर दी। राजन, उच्च स्वर में यही एक शब्द कहकर शैल क्षण भर चुप रहा। दूसरे ही क्षण कर्ण की ओर उन्मुख होकर जैसे सारथी घोड़ों की पूछ के विरूप दिखाई देने वाले बालों को तड़ातड़ उखाड़ता है, वैसे ही वह शब्द उलेड़ने लगा। इस सूत पुत्र ने मुझसे बदला लेने के लिए यह इतना घोर और नीच मार्ग अंत में क्या आपको सुझाया है? जो प्रतिशोध वह पांडवों से नहीं ले सका, वह आपके द्वारा मुझसे लेना चाहता है अब? राजन, एक सारथी के रथ का सारथ्य करने के लिए आप एक उच्च कुलस्थ छत्री से कह रहे हैं। जिसको हमारे रथ के घोड़े हाँकने चाहिए, उसके घोड़ों के वलकाएं मैं हाथ में ले लूं? हमारे होते हुए आपने इसे सेनापति बनाया, यही बहुत बड़ी भूल है, नितांत अनुचित है। शल्य गरजा। फिर भी राधेश शांत था, अविचल था, जालीदार गवाक्ष से एकटक बाहर अंधकार की ओर देख रहा था। मद्रराज, जिन कुरुओं की ओर से लड़ने के लिए आप आज आए हैं, उन कुरुओं ने अंगराज कर्ण को क्षत्रियत्व का सम्मान समस्त नगरजनों के सम्मुख सर्वसम्मति से अर्पित किया है, राज्याभिषेक कर उनको सेनापति पद दिया है। इसके अतिरिक्त कुरुओं की ओर से लड़ने के लिए जो भी राजा आए हैं, वे सभी दिग्विजयी अंगराज के मांडलिक हैं, यह मत भूलिए। यदि मुझे अवसर मिला और यदि मेरा वश चलता, तो पहले ही दिन आपको अंगराज कर्ण कुरुओं के सेनापति के पद पर आरूढ़ दिखाई देते। यदि मैं स्वयं सारथ्य कर्म कुशलता से करना जानता, तो मैं ही प्रसन्नता से उसके रथ के घोड़ों को हाँकता। निर्णय आपके हाथ में, लक्ष्य लक्ष्य योद्धाओं के प्राणों से संबंध आपकी सारथ्य कला को कुरुओं के श्रेष्ठ युवराज के रूप में इस कठिन अवसर पर मेरा यह आह्वान है। कहते हुए दुर्योधन ने गदा पर हाथ फिराया। बौखलाए हुआ शल्य क्षण भर में विचार मग्न हो गया। कर्ण के संकुचित होते गए पैरों की ओर एकटक देखने लगा, आंखें मिचमिचाने लगा, भार पर सिकुड़नों का जाल बुनने लगा। थोड़ी देर बाद विचार करके बोला, कौरवराज मैं तैयार हूँ। शिविर से बाहर निकलते समय शल्य ने अपने उत्तरी के छोर को पहाड़ से उड़ाया नहीं। उसके बाहर जाते ही दुर्योधन ने आवेग से आगे बढ़कर कर्ण की पुष्ट भुजाओं को अपने हाथों में पकड़ लिया। अंगराज, जो पितामह नहीं कर सके, गुरुद्रोण नहीं कर सके, उसे कल तुम ही संभव कर सकोगे। अखाड़े में नील कमलों की माला के नीचे चूर्ण विचूर्ण हुआ धनुर्धर कर्ण तुम्हें याद है। स्मरण है कि तुम्हें कापिले नगर में स्वयंवर मंडप के कुंड में अपने स्याह मुख के प्रतिबिंब को देखने वाला वीर कर्ण, गंगा के तट पर सुदामन की चिता के लपटे याद है तुम्हें। स्मरण है शोण केशर स्त्राण का चुंडालंकार। स्मरण है न तुम्हें पितामह गुरुद्रोण शोरण शोण और सत्यसेन के तड़पते पराक्रम का अंत। अंगराज, कल अर्जुन के धनुष की प्रत्यंचा इस प्रकार टूटनी चाहिए कि उस टूटी हुई प्रत्यंचा के लपेटन ही फंदे की तरह अर्जुन के नीले कंठ में अच्छी तरह कस जाए। उसके रथ पर बैठे नीले सारथी को पता भी नहीं चले कि अर्जुन इस प्रकार काला नीला होकर एकदम कैसे गिर पड़ा। बोलो अंगराज, बोलो। उसने जोर से कर्ण के भुजदंड को हिलाया। उसकी कंजी आंखें कर्ण के विशाल कपाल पर अपना भविष्य पढ़ने के लिए घूर रही थी। राजन, तुम्हें विजय प्राप्त करने के लिए मैं प्राणपण से प्रयत्न करूंगा। जाओ, परंतु डौड़ी पिटवा दो कि आसपास के नगर के याचकों को कल मुक्तदान मिलेगा। उसने दुर्योधन को धैर्य बताया। सरके हुए उत्तरी को आनंद से पुनः संवार कर कर्ण की भुजाओं को थपथपाकर दुर्योधन उसके शिविर से बाहर निकला। आसपास के मशालों में से एक मशाल हाथ में लेकर प्रभंजन उसको मार्ग दिखाने लगा। दोनों ही आकृतियां दुर्योधन के शिविर में प्रविष्ट होकर अदृश्य हो गई। 16वें दिन की शुक्ला द्वितीया की रात। कल के गर्भ में क्या है, इसकी आहट लेते हुए अंक में पड़े कुरुक्षेत्र को सुलाने के लिए दृष्टद्वती के तट के शीत वायुरूपी हाथों से थपथपा रही थी। फिर भी कुरुक्षेत्र को नींद नहीं आ रही थी, आने वाली भी नहीं थी। दूत ने समस्त इतिवृत्त दौड़ते हुए आकर हमसे निवेदित किया। उसे सुनकर किसी ने एक हास्यास्पद विचार रखा। मद्रराज शल्य को संबंध के रेशमी धागों का स्मरण कराकर अपनी ओर तोड़ने के लिए नकुल सहदेव को उसके शिविर में भेजा जाए। यदि यह संभव न हो तो शल्य को यह निदान सुझाया जाए कि कल के युद्ध में सारथ करते समय वह मर्मभेदी वचन कहकर बारंबार कर्ण को उसके हीन कुल को याद दिलाए और उसका तेजो भंग करे। कैसे विचित्र कल्पना थी। यह विचार रखने वालों को इस बात का ज्ञान ही नहीं था कि शल्य जैसा मानी राजा अपने धवल क्षत्रियत्व को कलंकित करने वाली ऐसे किसी भी कृत्य को करने के लिए कभी तैयार नहीं हो सकता था, नाते के मुंह में पड़कर भी नहीं। यदि उसने ऐसा ही अनुभव किया होता तो 16 दिनों से निरंतर गरजते तरसते युद्ध में वह बहुत पहले कौरवों से विश्वासघात कर बैठता। कौरवों की ओर से लड़ना उसे यदि स्वीकार न हुआ होता तो अपनी विशाल सेना लेकर वह पुनः सीधा मदर देश चला गया होता। आज इस युद्ध में वीरों को जो एक बार क्षम्य था वह क्रौर्य तो दिखाई दिया था किंतु विश्वासघात नहीं। और शल्य भले यथेक्ष प्रयत्न कर लेता किंतु कर्ण का तेजो भंग होना अब संभव नहीं था। अपनी जन्मदात्री माता द्वारा पांडवों से अपना क्या नाता है यह सुनकर भी उसका तेजो भंग नहीं हुआ। स्वयं मेरे मुख से पांडव पक्ष स्वीकार करने का आग्रह सुनकर भी कौरवों की ओर से लड़ने के लिए जो समरांगण में उतरा वह कर्ण अप्रत्येक दशा में अधिक संहारक सिद्ध होने वाला था। मरण के द्वार पर पड़े भीष्म पितामह की सलाह को जिसने जैसे वचन पूर्ति के लिए कवच कुंडलों को दूर कर दिया था वैसे ही दूर कर दिया था वह कर्ण। मैं सूर्य पुत्र हूँ यह जान लेने पर शल्य जैसे व्यक्ति द्वारा अब कैसे तेजहीन हो सकता था, ऐसी कोई बात संभव ही नहीं थी, न शल्य द्वारा और न कर्ण के ही द्वारा। मैंने सबसे शांतिपूर्वक सोने को कहा। मैं जानता था कि अमावस्या भले ही संध्या समाप्त हो गई थी किंतु अब आने वाली रातें अधिक अंधेरी थी। युद्ध का 17वां दिन उदित हुआ। वह शुक्ल तृतीया का दिन था। दोनों पक्षों की सैन्य संख्या अब आधी से अधिक कम हो गई थी। भीतर योद्धा न होने के कारण अनेक शिविर सोने हो गए थे, घोड़े निकाल लिए गए थे अश्वशालों से जैसे। प्रातःकाल के संधि प्रकाश में कौरवों का सेनापति बना हुआ वह प्रथम पांडव टीले जैसे एक काले किले पर खड़ा हो गया। विगत 16 दिनों से वह उस स्थान से सेनाओं को हलचलों की खोजबीन करता रहता था, इसीलिए वह स्थान कर्ण किला नाम से सब में परिचित हो गया था। चूंकि डौड़ी पिटवा दी गई थी इसलिए वह पूरा टीला कुरुक्षेत्र के आसपास के नगरों के याचकों ने घेर रखा था। भिन्न भिन्न आकारों के सुवर्ण थाल, हीरे, माणिक, वैदुर्य, मोती, प्रवाल आदि से किनारे तक भरे हुए उसके चारों ओर रखे गए थे। दिग्विजय में मिली हुई अतुल संपत्ति के बचे कुचे धनभाग को भी वह आज मुक्त हस्त से सबको दान करने वाला था। उसके मस्तक पर मेरे मुकुट के ही आकार का मुकुट था, कलाइयों पर रजनीगंधा की मालाएं थी। राजपुरोहित द्वारा बताया गया प्रातःकाल का शुभ मुहूर्त आते ही उसने अपनी गुलाबी हथेलियां हीरे माणिकों से खचाखच भरे हुए थालों में गड़ा दी। मुट्ठी भर भर कर वह सामने आने वाले प्रत्येक याचक को दान करके दोनों हाथ जोड़कर सभी ने वंदन कर रहा था। उसका जो मस्तक जरासंध के सामने नहीं झुका था, शल्य, शीघ्र, रुक्मरथ इन माणि राजाओं के आगे नहीं झुका था, पराक्रमी पांडवों के आगे नहीं झुका था, एकाध अवसर छोड़कर कभी मेरे सम्मुख भी नहीं झुका था, परीक्षा काल आते ही जगदग्नि पुत्र परशुराम के सामने भी नहीं झुका था, वही पुष्ट गोल हिरण्यवर्णी सूर्य पुष्प जैसा मस्तक कंटोपा पहने हुए कृष्ण याचकों के सम्मुख हर बार आदरपूर्वक झुक रहा था। क्यों, किस लिए, यह बात मैं जान सकता था, क्योंकि साधारण जनों की निर्लिप्त शुभेच्छाएं किसी भी आशीर्वाद की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ होती है। वह अब सामान्य जनों का आशीर्वाद ग्रहण कर रहा था एक योद्धा के रूप में। उसका दान सत्र पूर्ण होने जा रहा था, फिर भी नित्य की भांति सूर्य किरणों के सुनहले पारिजात पुष्पों की वर्षा कुरुक्षेत्र पर नहीं हुई। आकाश की नीली छत श्वेत मटमैले मेघों से आच्छादित थी। सदैव सूर्योदय के साथ चित्र विचित्र आवाजों के कलकल ध्वनि करने वाले कुरुक्षेत्र के आसपास खड़े हुए कदम कीकर मधुक किंशुक आदि डौलदार वृक्षों पर रहने वाले पक्षीगढ़ व्यर्थ ही चोंच ही चोंच में आवाजें कर रहे थे। सूर्योदय के साथ प्रफुल्लित होने वाले कुरुक्षेत्र की स्थूल वनस्पतियां गर्दन लटकाकर अर्धनिद्रित सी कुमलाई हुई थी। उन पर शारदीय ओस की बूंदें चमक रही थी, चमकने वाली भी नहीं थी क्योंकि वातावरण कुंठित हो रहा था। 8. आज का रणक्षेत्र अमीन नामक एक अत्यंत ऊंचे टीले के नीचे चुना गया था। पूर्व की ओर से कुरुओं की तथा पश्चिम की ओर से पांडवों की सेना रणभूमि के पास एकत्रित हो गई थी। मद्र, मगध, मत्स्य, मथुरा, मालव, वत्स, बंग, विदेह, विदर्भ, कुलिंद, किरात, काशी, कुशल, कम्बोज, कामरूप, निषद, आभीर, गांधार, आर्यावर्त के सभी देशों के युद्धोत्सुक योद्धा युद्ध का अंत क्या होगा इस आशंका से कुरुक्षेत्र के चारों ओर एकत्रित हुए थे, एक निष्ठा से लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। शाकल, गिरिव्रज, विराटनगर, अवंती, प्रयाग, ताम्रनगर, कुसुमपुर, कुंडीनपुर, चंदनावती, काष्ठमंडप, वाराणसी, अयोध्या, चंपावती, महिष्मती, पुष्करावती, समस्त राजनगरों के विविध रंगों के भिन्न भिन्न आकारों के सभी राजध्वज रणक्षेत्र को मानवंदन करते हुए फहराने लगे। आज गुरुसेन ने सूर्यबिंब की तरह गोलाकार आकार धारण किया था। अनेक योजनों के घेरे का यह गोला सेनापति कर्ण के जत्ररथ के पीछे फैला हुआ था। उस राधे ने अपने जत्ररथ को वंदन कर प्रदक्षिणा की। आंखें बंद कर वह सूर्य स्त्रोत पढ़ रहा था। मृत्युदेव के वाहन महेश जैसा आकार लेकर पांडवों की सेना अर्जुन के नंदी घोष रथ के पीछे खड़ी थी। उसका अंतिम पथक एकदम अमीन टीले की जड़ से जाकर भिड़ गया था। जत्ररथ का पार्श्व भाग शूल, तोमर, पट्ट, गदा, दिव्यास्त्र, खड्ग, चक्र, भिंदीपाल, शतघ्नि तथा असंख्य प्रकार के बाणों के भांतों से ठसाठस भरा हुआ था। श्रृंखला दंडांकित ध्वज उसके माथे पर फहरा रहा था। उसकी कलाई में रजनीगंधा की बड़ी बड़ी कलियों की माला कसकर बांधी हुई थी। वह कर्ण अपने जत्ररथ में अपना दायां पैर पायदान पर रखकर चढ़ा। उसके भार से हिले हुए रथ पर घंटियां हिलती डुलती हुई किण किण ध्वनि कर उठी, पुष्प मालाएं डोल उठी, माथे पर हाथी के श्रृंखला और दंड से सुचिन्हांकित ध्वज क्षण भर हिलकर पुनः सीधा हो गया। उस वीर सेनापति के रथारूढ़ होते ही उसका सारथी शल रथनीर की ओर बढ़ा। उसने उसके हस्तिदंत जैसे दिखाई देने वाले ऊंचे घोड़ों की वलगाएं हाथ में ली। उनमें एक घोड़ा अधिक ऊंचा था। व्याघ्र चरम से मढ़े हुए गोलपटल में खोसे हुए प्रतोद को खींचकर शल ने हाथ में ले लिया। शल्य और सारथी, मैं मन ही मन हंसा। काल ने शल्य को बहुत बड़ा प्रतिरोध लिया था। पांडव सेना के अग्रभाग में खड़े हुए अर्जुन को मैंने रथारूढ़ होने को कहा, परंतु वह चुपचाप खड़ा रहा। मैं रथारूढ़ होकर जब तक हाथ में बलगाएं और प्रतीत न ले लूंगा तब तक वह आज नंदी घोष पर चढ़ने वाला ही नहीं था। क्षण भर हंसकर मैंने भी नंदी घोष पर पैर रखा। जानबूझ कर बाएं हाथ में प्रतोद लेकर जोर से फटकारा। रथारूढ़ होकर मैंने अपने शुभ्र पांचजन्य शंख से जैसे युद्ध प्रेरक बोल निकाले अर्जुन भी रथारूढ़ हो गया। अपने देवदत्त शंख से वह मेरे बोलों का स्वर से स्वर मिलाकर अचूक अनुकरण करने लगा। आज पहली बार हमारी सेना ने हम दोनों के नाम का जयघोष कर कोलाहल किया। यह जयघोष की ध्वनि अमीन टीले की दृढ़ भित्ति से टकरा कर पुनः पांडव सेना में गूंजने लगी। कुरुक्षेत्र का परिसर गुंजायमान हो गया। आकाश अब भी गिरा हुआ ही था। कुरुक्षेत्र के ऊपर नीली छत को भेद कर जाने वाली नैतिक जयघोषों की तुमुल ध्वनि से भी यही यदि वह कभी स्वच्छ हो जाए तो भले ही हो। पांडव सेना के जयनाद को सुनते ही कुरुओं का वह सेनापति सरसराकर प्रफुल्लित होने वाले सूर्य पुष्प की तरह एकदम फूल उठा। अब वह केवल कर्ण नहीं था, राधे नहीं था, कौंतेय नहीं था, नाते तो वह कवच कुंडलों की तरह बहुत पहले दूर कर चुका था। वह था केवल सेनापति, अकेला प्रज्वलित सूर्यपुत्र। उसने क्षण भर पूर्व की ओर आच्छादित क्षितिज को देखा। अपना विशाल शुभ्र हिरण्य गर्भ शंख दोनों हाथों की विशाल पकड़ में दृढ़ता से पकड़कर उसने पीछे फैले हुए कुरुसैन्य की गोलाकृति पर एक बार दृष्टि डाली। दूसरे ही क्षण पुष्ट हाथी के पैरों की तरह दिखाई देने वाला उसका कंठ भाग फूल उठा। रक्तमय धमनियां तन गई। अपने विशाल वक्षस्थल में आसपास की हवा भरकर वह अपने हिरण्य गर्भ संघ से अनजाने दिव्य बोल निरंतर बाहर निकालने लगा। योद्धाओं के अंगों को रोमांचित करने वाले वे बोल स्वयं मेरे लिए भी अपरिचित थे। धुंधुबी, नगाड़े, मृदंग, डिंडिम आदि रणवाद्यों के स्वरों को भी भेद कर उसके शंख के बोल मुझे पांडव सेना में स्पष्ट सुनाई दे रहे थे। वे ध्वनिया नहीं थी, मानव सनसनाते हुए प्रकाश तरंगे ही थी। अपने दाएं हाथ के धनुष विजय को पुनः पुनः ऊंचा उठाते हुए आरोह, आगम आदि घोषणाएं करता हुआ वह पर्वतकालीन विक्षुब्ध समुद्र की तरह गरजता हुआ आने लगा। विक्षिप्त अरण्या नील का मृत्यु गीत साथ लेकर आने लगा। विद्युत प्रहार बनकर आसपास के भूखंड को जलाने के लिए ज्वालामुखी बनकर आने लगा। पुत्र का कर्तव्य समझकर आच्छादित सूर्य का कुरुक्षेत्र को संतप्त करने का कार्य स्वयं पूरा करने के लिए प्रतिसूर्य बनकर उस असीम कौरव पांडव सैन्य में मेरे अतिरिक्त किसी को भी यह विदित नहीं था कि वह सूर्यपुत्र है। पूर्वों के सैनिक अंगराज कहकर उसका जय घोष कर रहे थे। पांडवों के सैनिक राधे कहकर अपने पागल मन को समझा रहे थे कि उसके पराक्रम का उन्हें रत्ती राई भर भी भय नहीं है। कोई भी उसको सूर्यपुत्र नहीं कह रहा था, फिर भी वह स्वयं से पूर्ण रूप से परिचित व सूर्यपुत्र अडिग, अमित, वीर्यवान, अमर्षि, अशरण, दानवीर चढ़ता आ रहा था। उसको संरक्षण देते हुए उसके पुत्र विश्वसेन और चित्रसेन, अश्वत्थामा, शकुनी, दुशासन, कृप, दुर्योधन, कृतवर्मा आदि सभी कौरव योद्धा क्रुद्ध होकर पांडव सेना पर चढ़ते आ रहे थे। मैं नंदी घोष से पुनः नीचे उतरा, शिविर में जाकर रथ के आरों में लगाने के लिए औंगने का पात्र ले आया। हमारे नंदी घोष को संरक्षण देते हुए भी सातकी, उत्तम औजा, दृष्टिद्युम्न, नकुल, सहदेव, युजुधान आदि के रथ दौड़ने लगे। दूर के प्रचंड बादल आकाश में छाने लगे। रणवाद्य, जय घोष आदियों के चित्कार, घोड़ों का हिन हिनाना, रथचक्रों की घर घर खींची हुई प्रत्यंचाओं की टंकार, इन सब के मिलने से उत्पन्न एक विचित्र मिश्रित ध्वनि अमीन टीले को प्राचीर से टकराकर गरजती हुई प्रतिध्वनि करने लगे। प्रत्युत फटकारने की आवाजें घोड़ों की हिन हिनाटों में विलीन होने लगी। गरुड़ पक्षियों के परस्पर विरुद्ध दिशा में से आने वाले दो झुंड एक दूसरे पर पंखों की कपाने वाली फड़फड़ करते हुए भयानक रूप से जैसे टकराए वैसे ही दोनों सेनाओं के योद्धा बाण फेंकते हुए एक दूसरे से भयंकर रूप से टकराने लगे। सैन्य से सैन्य भिड़ गया, युद्ध प्रारंभ हो गया। रथों से फेंके गए मेरे एक मध्य के रिक्त कुंभ कुरुक्षेत्र पर लुढ़कते हुए दौड़ने लगे। उन पर होकर निकलते समय बहुत से रथों का संतुलन बिगड़ गया और उस पर फिर से अश्वसाद ऊपर आ जाने के कारण वे रथ चकनाचूर हो गए। कर्ण का रथ धरती को भयानक धक्के देते हुए उसके हंसवर्णीय शुभ्र घोड़े ऐसे खींच लाए कि क्षण भर पहले युद्ध भूमि के एक छोर पर सामने खड़ा हुआ हुआ अरिंदम महावीर पांडव सेना में पांचालों के हाथी, घोड़े और पैदल इन तीनों विभागों से खचाखच भरी हुई अग्रिम पंक्ति में कब घुस गया इसका पता भी न चला। वह निर्भय सेनापति कंठराव से इस प्रकार आह्वान कर रहा था कि रथ और घोड़ों से गिरे हुए कुरु सैनिक पुनः सावधान होकर उठने लगे। जो हाथ आता उसी वाहन पर आरूढ़ होकर पांचालों पर टूट रहे थे। समुद्र से मिलने वाला महानद अपने साथ असंख्य लहरों का तांडव नृत्य लेकर जैसे गरजता हुआ आता है वैसे ही वह मद तथा रणमस्ती से उन्मत्त हुए कुरुओं के हाथी, घोड़ों और पदाति के भान रहित विक्षुब्ध सैकड़ों पथकों को लेकर आया था। उसकी दाई तथा बाई ओर चित्रसेन और प्रसेन थे एवं उसके पीछे वृषसेन। इस प्रकार उसके तीन पराक्रमी पुत्र उसको संरक्षण देते हुए दौड़ते आए थे। किरणों के साथ सूर्य भी मानो ऊपर टूट पड़ा ऐसा आभास हो रहा था। उसको सामने से आता हुआ देखकर हमारे पीछे दौड़ते हुए इंद्रप्रस्थ के पथकों को कुछ देर रोकने के विचार से अर्जुन का रथ मैंने बीच में ही रोक दिया, क्योंकि मैं जानता था कि मेरे रंग को अपने नीले नेत्रों से अचूक पहचान कर वह अर्जुन पर ही चढ़ता चला आ रहा था। इसकी चपल हलचलों के द्वारा यह बात स्पष्ट हो रही थी। जैसे ही वह निकट से निकटतर आया वैसे ही हमसे आगे बाईं ओर थोड़ा बढ़ा हुआ दृष्टिदुग्न पांचाल का सैन्य लिए एकदम तिरछा घुसकर हमारी सेना के सामने आकर खड़ा हो गया। पहले प्रहार की यह चाल मैंने रात ही दृष्टिदुग्न को अच्छी तरह समझा दी थी। निश्चित कार्यक्रम के अनुसार उसने हमारे सामने अपनी पांचाल सेना को लाकर उस ज्वालामुखी को अपने ऊपर ले लिया। अकस्मात ही पांचालों के पथकों को सामने आया देखकर जैसे आहत क्रुद्ध हाथी सरोवर में घुसता है वैसे ही वह सीधा पांचालों के पथक में घुस गया। हाथ के विजय धनुष को ऊंचा उठाकर कर्ण विषैले बाणों के निरंतर मृग नक्षत्र की वर्षा की तरह बौछार कर रहा था। पांचालों के असंख्य गज पथकों पर बरसाने लगा। विष का प्रभाव होते ही हाथी विक्षुब्ध होकर इतस्तत दौड़ने लगे। उनके कर्कश चित्कारों से यही किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि पांचालों के पथकों में क्या क्या हो रहा है। धूल के बादल अवगुंठित आकाश की ओर अधिक आच्छादित होने लगे। द्रौपदी के स्वयंवर के समय भरे मंडप में कर्ण की अवहेलना को जिन पांचाल योद्धाओं ने हंसी के ठहाके लगाते हुए देखा था, उसने अब सूर्यपुत्र मृत्यु का रूप धारण कर प्राणों के भय से चित्कार करवा रहा था। धधकता हुआ यज्ञकुंड जैसे संविधाओं की गठरियां जलाकर राख कर देता है, वैसे ही उसके अग्निबाण पांचाल वीरों को जलाकर राख कर रहे थे। उस जिसकी डाल डाल पर रक्त पुष्प लदे हुए हैं, ऐसा पलाश लाल सारंग पक्षियों के झुंड उतरते हैं, तब जितना रक्तवर्णी और भड़कीला दिखाई देता है, उतना ही भयावह व संतप्त राधेय दिखाई दे रहा था। पर्वत की पादभूमि के समीप घने कछार में भड़की हुई दवाग्नि सरसराती हुई जैसे अरण्य की ओर दौड़ती है, वैसे ही वह निर्भय होकर पांचालों की संरक्षण की पंक्तियों को एक के बाद एक तोड़ता हुआ अपने पीछे आने वाले वीरों को सावधान करता हुआ आगे ही आगे दौड़ रहा था। जीवन भर मन में समाये रहने वाले संभ्रम को वह अब उसने दूर कर दिया था। अब उसकी देह में केवल युद्ध की सरलता से न उतरने वाली एकमात्र मदिरा चढ़ी हुई थी। वह दौड़ता आता था। कछार में चढ़ने वाले अन्य अश्वों के झुंड में जैसे ही कोई क्रुद्ध क्षुधित सिंह गरजता हुआ आ घुसता है, वैसे ही वह पांचालों के पथक में घुस गया। केवल आधी घड़ी में ही उसने पांचालों की अग्रिम पंक्ति के सभी पथकों को मिटा डाला। उसके बाण ठीक टिड्डी दल जैसे थे। मृग नक्षत्र की सतत मूसलाधार वर्षा के बूंदों की तरह वे एक दूसरे के पुच्छ भाग को पकड़े हुए अखंड रूप से गिर रहे थे। हाथ की चारों उंगलियों को पकड़ में पांच छह जितने आ सके उतने बाण एक साथ लेकर सबको एक बार में फेंकता जा रहा था। पर अब झपकने नहीं पाते थे कि उसके भारी धनुष से इस प्रकार फेंके हुए असंख्य बाण चारों दिशाओं में दौड़ जाते। कब भाते से बाण निकलता, कब प्रत्यंचा पर चढ़ाकर उनसे उसने लक्ष्य साधा, इसी का पता नहीं चलता था। नदी के प्रवाह में पड़ा हुआ नागरमोथा पानी की धार के साथ जैसे निरंतर डगमग हिलता रहता है, वैसे ही उसके हाथ और नेत्र बाण फेंकते समय सतत हिल रहे थे। क्षण प्रतिक्षण पांचाल पटापट धराशायी होते हुए एक एक पग पीछे की ओर सरकने लगे। पंक्ति टूट रही थी। पांचालों का नायक दृष्टद्युम्न पीछे हटने लगा। पांचालों को पीछे हटने से रोकने के लिए चेरी सातकी तथा इंद्रप्रस्थ के पांडव पथक उनकी सहायता के लिए दौड़े, परंतु जैसे ज्वार के समय समुद्र बाहर के निर्झर जल को अपने में मिलने को तैयार नहीं होता, वैसे ही वह दीर्घबाहु प्रथम पांडव ने वापस लौटाने लगा। चेदियों के गजदल में घुसकर उसने कुछ ऐसा कोलाहल मचाया कि चेदियों को समझ में ही नहीं आया कि अपना कौन है और शत्रु कौन। पहली घटका में कर्ण ने भानुदेव चित्रसेन सेनाबिंद तपन और शूरसेन इन प्रसिद्ध पांचाल वीरों को कंठ स्नान करा दिया। सैकड़ों हजारों चेदवीर और सातकी उसके रथ के नीचे कुचले गए। जैसे गगनमंडल में चंचल स्वच्छंद विहार करती है, वैसे ही वह चतरंग दल में मारो मारो चिल्लाता हुआ घूमने लगा। मैंने पांचालों को पीछे से अर्जुन के पथक को धीरे से निकालकर संक्षप्तकों की सेना से भिड़ा दिया। अर्जुन के अमोघ बाण मेरे सिर पर से सतत सूं सूं की आवाज करते हुए दौड़ रहे थे। संक्षप्तक जिधर रास्ता मिलता उधर ही भाग रहे थे। अर्जुन की सेना उनका पीछा कर उन तक पहुँचने लगी, उनको बाणों का लक्ष्य बनाने लगी।